हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। लेकिन तभी अचानक तारा परी ने देखा कि जितने भी कीड़े मकोड़े छोटे छोटे थे, वे धीरे धीरे बड़ा रूप लेने लगे थे, और कुछ तो उनमें से उड़कर करिश्मा जी की ओर आने लगे थे, मानो करिश्मा जी पर वे हमला करना चाहते हों। तारा डर के मारे कांप रही थी। सब कुछ बहुत ही भयानक सा लग रहा था। तारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो करिश्मा जी की जान कैसे बचाए। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर एक भी कीड़ा करिश्मा जी के हाथों पर, पैरों पर या शरीर के किसी भी अंग पर काट लेता तो वो कितना जहर उनके अंदर छोड़ सकता था। तभी जब करिश्मा जी अपने मुंह से आंख के शोले निकालने में मशगूल थीं और तारा उनके ठीक पीछे खड़ी थी, ठीक उसी वक्त तारा परी ने अपने हाथ की छड़ी उठाई। छड़ी उठाकर उसने जल्दी ही मंत्रों का उच्चारण किया और सभी कीड़ों की ओर किया। जल्द ही तारा परी की छड़ी में से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी। जितने भी कीड़े बड़े बड़े आकार का रूप ले रहे थे, धीरे धीरे वे सामान्य होने लगे। करिश्मा जी को लगने लगा था कि उनके शक्तिशाली शोलों का प्रभाव होने लगा है और कीड़े मकौड़े जल्दी ही छोटे होने लगे हैं, इसीलिए वे और तेजी से आगे के शोलों से उन पर हमला करने लगीं। लेकिन करिश्मा जी को दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनके ठीक पीछे से उनकी बहू उनके मकौड़ों का खात्मा कर रही थी। जल्द ही तारा परी ने छड़ी उठाकर सभी कीड़े मकौड़ों पर हमला करना शुरू कर दिया। तारा परी को अपनी काफी सारी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, क्योंकि ये कीड़े मकौड़े कोई आम कीड़े मकौड़े नहीं थे। ये काली शक्तियों के गुरु द्वारा बिछाया हुआ जाल था, जो सिर्फ और सिर्फ तारा और करिश्मा जी को उनकी मंजिल तक जाने से रोकना चाहता था। लेकिन अब तारा परी ने भी ठान लिया था कि वो इन सब का सर्वनाश करेगी, और तारा परी की शक्ति के आगे वे कीड़े मकौड़े ज्यादा देर नहीं टिक पा रहे थे। एक एक करके सभी कीड़े मकौड़े वहां से गायब होने लगे, और तारा परी ने ध्यान दिया कि जिस जिस जगह से वे कीड़े मकौड़े गायब हो रहे थे, वहां अब बहुत ही खूबसूरत नीले रंग का पानी भरता जा रहा था। जल्द ही तारा परी ने अपनी जादुई छड़ी से सभी कीड़े मकौड़ों को गायब कर दिया, और उन सबको खत्म करने के बाद वो बिल्कुल सामान्य इस तरह से खड़ी हो गई थी मानो उसने कुछ किया ही ना हो। जल्द ही सभी कीड़े मकौड़ों की जगह अब बहुत ही खूबसूरत पानी भर चुका था। उसके बाद करिश्मा जी भी अपने सामान्य रूप में आ गईं और तारा के पास आकर बोली, देखा तुमने मैंने किस तरह से इन कीड़े मकौड़ों का खात्मा किया। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी जिन्न सास तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर करिश्मा जी अपनी बड़ाई करने लगी। तारा परी करिश्मा जी के इस तरह के व्यवहार पर मुस्कुरा दी और बोली, मुझे लगता है माँ, अब हमें जल्दी चलना चाहिए। वैसे भी शाम होने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए और हमें कुछ भी समझ में ना आए। हमें शिव मंदिर के अंदर जाकर जल्द से जल्द वो गुप्त जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर काली शक्तियों के गुरु ने पिताजी को रखा हुआ है। कहीं ना कहीं करिश्मा जी को तारा की बात जच गई, और जल्द ही वे दोनों उस बड़े से रंग बिरंगे नील सरोवर के ऊपर से शिव मंदिर की ओर जाने लगीं। वो शिव मंदिर सरोवर के एक कोने पर स्थित था। उसके सामने एक बड़ा ही खूबसूरत नीले पानी का सरोवर था, जिसमें रंग बिरंगी छोटी छोटी मछलियाँ तैरती थीं, जो अपने आप में उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती थीं। लेकिन काली शक्तियों के गुरु ने तारा और करिश्मा को डराने के लिए अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके उन छोटी छोटी खूबसूरत मछलियों को भयंकर मोटे मोटे कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, कॉकरोच, जू, इन सब में बदल दिया था। तारा परी और करिश्मा जी जल्दी ही सावधानी से उस सरोवर को पार करने लगीं। अभी वे सरोवर के आधे में ही पहुंची थीं कि तभी अचानक वहां की पृथ्वी में कुछ कंपन सा महसूस होने लगा, मानो भूकंप आ गया हो। तारा और करिश्मा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। यह कुछ और नहीं बल्कि काली शक्तियों के गुरु की एक आखिरी कोशिश थी उन लोगों को उस शिव मंदिर तक पहुंचने से रोकने के लिए। तारा कहीं ना कहीं यही सोच रही थी। जो तारा परी अब तक करिश्मा की मदद करती हुई आई थी, वो भी उन्हें उनकी नजरों में बिना आए। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि शायद उसे अपने असली रूप में आना ही होगा, और यहाँ से क्योंकि वो करिश्मा को उड़ाकर ही शिव मंदिर तक ले जा सकती थी। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी पीछे से उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही तारा और करिश्मा ने पीछे पलटकर देखा तो वे हैरान रह गईं। उनके ठीक पीछे विक्रांत रंधावा खड़ा हुआ था। वो कंपन जो उस छोटे से पुल पर महसूस हुई थी वो किसी और के नहीं बल्कि विक्रांत रंधावा के वहां आने पर महसूस हुई थी। तारा परी विक्रांत को देखकर पूरी तरह से चौंक गई, लेकिन विक्रांत वहीं से खड़ा हुआ करिश्मा जी को हाथ हिला रहा था। तारा और करिश्मा जी कुछ देर तक एक दूसरे को देखती रहीं और सोचने लगीं कि अचानक से ये विक्रांत रंधावा यहाँ कैसे आ टपका, और कहीं न कहीं तारा अपनी सोच में काफी आगे तक निकल गई थी। तभी विक्रांत रंधावा पलक झपकते ही धीरे धीरे उनके सामने आ खड़ा हुआ था। जैसे ही उन दोनों ने ये देखा कि विक्रांत रंधावा एक पल में तो उन्हें सरोवर के एक किनारे पर दिखाई दिया था, अचानक से वो उनके सामने आ खड़ा हुआ था, तो उनका दिल और दिमाग सुन्न हो चुका था। और कहीं न कहीं तारा पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि विक्रांत रंधावा कौन है। विक्रांत रंधावा सीधा तारा परी के सामने आकर खड़ा हुआ और उसे देखता रहा। तब करिश्मा जी तारा को अपने पीछे करते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गईं और बोली, तो यहाँ क्या कर रहा है और तुझे कैसे पता चला कि हम यहाँ इस जंगल में इतनी दूर हैं, और तू अचानक से सरोवर के कोने से यहाँ तक कैसे आ गया, चक्कर क्या है आखिर। करिश्मा जी की बात सुनकर विक्रांत रंधावा उन्हें घूर कर देखने लगा और अचानक से तेज आवाज में बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आकर खड़े होने की, जाइए और जाकर चुपचाप पीछे खड़े हो जाइए, मुझे तारा को देखने दीजिए। विक्रांत रंधावा ने जैसे ही ये कहा तब करिश्मा जी की आंखों में आग जलने लगी। उनके गुस्से से बहुत बुरा हाल हो गया था और अचानक से करिश्मा जी की आंखें एकदम से लाल हो गईं और विक्रांत के इस तरह से बोलने पर वे उसे तेज आवाज में बोलीं, तू जानता है तू किससे बात कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। ऐसा कहकर जैसे ही उन्होंने अपना हाथ विक्रांत को मारने के लिए उठाया, तुरंत विक्रांत रंधावा ने करिश्मा जी की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। तारा परी ये देखकर चिल्ला उठी, कौन हो तुम, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो माँ को छोड़ो। करिश्मा जी की जुबान धीरे धीरे बाहर आने लगी क्योंकि उन्हें कुछ भी करने सोचने का मौका ही नहीं मिला था। विक्रांत ने अचानक से ही करिश्मा जी की गर्दन को दबोच लिया था। तब विक्रांत रंधावा ने करिश्मा जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने कहा ना मुझे तारा को देखने दो, तो तुम मेरे और तारा के बीच में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खड़े होने की। हाँ, ऐसा कहकर उसने बड़ी ही बदतमीजी से करिश्मा जी की ओर मुंह चढ़ाया। उसके बाद उसने करिश्मा जी का गला छोड़ दिया और तारा के सामने जाकर खड़ा हो गया और फिर पागलों की तरह तारा को देखने लगा। तारा हैरानी से विक्रांत को देख रही थी और अब वो पूरी तरह से समझ चुकी थी कि वो राक्षस का अंश किसी और के अंदर नहीं बल्कि विक्रांत रंधावा के अंदर ही है, वरना ये इस तरह का रिएक्शन क्यों करता और इस तरह का कंपन क्यों आता। वो समझ चुकी थी कि वहाँ क्या हो रहा था, लेकिन तारा परी साथ ही साथ इतना तो समझ चुकी थी कि ये वक्त उसके डरने का नहीं बल्कि इस राक्षस से मुकाबला करने का है। तभी करिश्मा जी थोड़ा सांस लेने के बाद विक्रांत से एक बार फिर बोली, विक्रांत ये क्या बदतमीजी है, तू क्या कर रहा है ये सब। हाँ,
जैसे ही करिश्मा जी ने विक्रांत की ओर देखते हुए ऐसा कहा, विक्रांत जोरों से हंसने लगा और बोला, वो आंटी आंटी प्यारी आंटी प्यारी आंटी, सॉरी सॉरी करिश्मा जी, देखिए ये आंटी आंटी कहकर बेकार में मेरा मुंह खराब हो गया, मुंह और दुखने लग जाता था, आंटी ये आंटी वो, बट अब नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपनी तारा को पिछले दो दिनों से नहीं देख पाया हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तो इसकी सजा तो तुम्हें आज मिलकर ही रहेगी। विक्रांत रंधावा की बात सुनकर तारा की आंखें हैरत से फटी रह गई। एक तो वे सरोवर के बीचों बीच खड़े थे, वो भी जाने को जो स्पेस था वो काफी कम था, एक एक ही आगे पीछे उस जगह से जा सकता था। एक तरह का छोटा सा पुल बना हुआ था जो उस सरोवर के ठीक ऊपर से था और उसी बीच में विक्रांत रंधावा उनके लिए मुसीबत बनकर आकर खड़ा हो गया था। तारा परी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थीं। तभी करिश्मा जी थोड़े से तेज और गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी विक्रांत, तूने आज बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर जल्दी ही करिश्मा जी अपने जिन वाले रूप में आने लगीं, लेकिन विक्रांत रंधावा करिश्मा जी की ओर इस तरह से देख रहा था मानो उन्हें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिन बन रही है या फिर वो इंसानी रूप में है, वो तो सिर्फ पागलों की तरह तारा परी को देखे जा रहा था। और तारा परी ये सोच रही थी कि वो यहाँ से कैसे निकले, क्योंकि वो विक्रांत रंधावा का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन उसे सबसे पहले इस बीचों बीच जो पुल पर अटक गई थी, यहाँ से निकलना था। इसलिए उसने मामले की नज़ाकत को समझते हुए तारा परी ने थोड़ा सा दिमाग से काम लिया और करिश्मा जी को शांत कराने लगी और कहा, आप शांत हो जाइए माँ और इंसानी रूप में वापस आ जाइए। और तभी विक्रांत रंधावा की ओर देखते हुए बोली, विक्रांत जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तारा परी ने झूठ मुंह का नाटक करते हुए कहा और बोली, यहाँ देखो, हम सरोवर के बीचों बीच खड़े हैं, हम लोगों का इस तरह से यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है, हम लोग वहाँ पर आगे चलकर भी तो बात कर सकते हैं ना, सबसे पहले हमें ये पुल पार करना चाहिए, पुल पार करने के बाद हम उधर जाकर बात करेंगे।